ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के लिए मार्गशीर्ष मासांत तक अस्थायी आवास निर्माण संपन्न करने का प्रधानमंत्री प्रचंड को नेपाली कांग्रेस ने दिया सुझाव। संघीयता और गणतंत्र जैसी उपलब्धियों की रक्षा के लिए नया अभियान शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। नेपालियों का महान पर्व तिहार आज से हुआ शुरू, आज पहले दिन मनाया गया काग तिहार। और उत्तरी गजा में इसराइली सैनिकों और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अस्पतालों में मौजूद हजारों लोगों के लिए पैदा हो गया है खतरा। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री द्वय गगन कुमार थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र से लौटने के बाद सुझाव सहित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का ध्यान आकर्षण कराया है। भूकंप के कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुए जाजरकोट और रुकुम पश्चिम से लौटने के बाद महामंत्री द्वय ने नागरिकों की अपेक्षा और अपने सुझाव सहित प्रधानमंत्री प्रचंड का ध्यान आकर्षण कराया। उन्होंने बढ़ते ठंड में प्रसूता महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को होने वाली संभावित कठिनाइयों का जिक्र करते हुए मार्गशीर्ष महीने के अंदर पीड़ितों के लिए अस्थायी आवास निर्माण संपन्न करने के लिए युद्ध स्तर पर काम को आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण को प्रभावकारी बनाने का सुझाव दिया है। समिति के सभापति रामहरि खतिवाड़ा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात कर भूकंप पीड़ितों के उद्धार और इलाज लगायत कामों पर सरकार की अग्रसरता को लेकर उन्हें धन्यवाद भी दिया। मुलाकात में समिति के सदस्यों ने अस्थायी आवास के काम ठंड से पहले ही संपन्न करने, मृतकों के परिजनों को आर्थिक राहत मुहैया कराने, प्रभावित क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करने लगायत विभिन्न सुझाव सरकार को दिए थे। समिति का प्रतिवेदन लेते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि संसद से प्राप्त सुझावों का अच्छे से अध्ययन कर क्रियान्वयन किया जाएगा। उप प्रधानमंत्री पूर्ण बहादुर खड़का भूकंप पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत सामग्रियां लेकर रुकुम पश्चिम पहुंचे। आज सुबह सुरखेत विमानस्थल पर उतरकर वे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे। उप प्रधानमंत्री खड़का ने कहा कि सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सभी को समय पर ही राहत मिले, इस विषय को सरकार ने गंभीरता से लिया है और सरकार कोशिश करेगी कि रविवार तक सभी पीड़ितों को राहत सामग्री मिल जाए। बता दें कि कार्तिक 17 गते जाजरकोट को केंद्र बिंदु बनाकर आए भूकंप के बाद मंत्री खड़का उद्धार और राहत कार्य में सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने रुकुम पश्चिम भूकंप पीड़ितों के लिए त्रिपाल और झोपड़ियों में रह रहे लोगों के लिए निःशुल्क और बिजली की व्यवस्था की है। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र आगबिस्कोट नगरपालिका और सानो भेरी गांवपालिका में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गई। ये जानकारी रुकुम पश्चिम के प्रमुख शिवजी शाह ने दी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता अनुसार अन्य जगहों पर भी बिजली लगाई जाएगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल को जाजरकोट भूकंप में हुई जनधन की क्षति पर गहरा दुख जताते हुए विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने समवेदना संदेश भेजा है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर स्टेनमेयर, चेक गणतंत्र के राष्ट्रपति पीटर पावेल, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान दर बेलेन, निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा, कतर के अमीर शेख तमीन बिन हमाद अल थानी और स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सेंचेज ने अलग अलग संवेदना संदेश भेजा है। उन्होंने अपने संदेश में राहत और पुनर्स्थापना के काम में सहयोग के लिए खुद को हमेशा तैयार बताया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि उन्होंने गणतंत्र और संघीयता जैसी उपलब्धियों की रक्षा के लिए अपनी ओर से और पार्टी की ओर से नए अभियान की शुरूआत की है। आज नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा कीर्तिपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि गुजरे समय से पाठ सीखते हुए जनता में आशा जगाने का कार्य शुरू किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वैदेशिक रोजगार के लिए गए करीब 4 लाख श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्रों में रह रहे हजारों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समेटने का काम किया है। उन्होंने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के नेपाल भ्रमण का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौसम परिवर्तन के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट हुआ है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G थिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. महान पर्व त्यौहार आज से शुरू हुआ है. त्यौहार अंतर्गत आज काग त्यौहार मनाया गया. बता दें कि काग त्यौहार के दिन कौओं की पूजा की जाती है तथा उन्हें खाना खिलाया जाता है. यमपंचक के अंतर्गत मनाए जाने वाले काग त्यौहार के अवसर पर आज 20वां काग सम्मेलन का आयोजन किया गया. आज काठमांडू की शांति वाटिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकार रमेश दुलाल काग ने कौओं की आवाज निकालकर कौओं को बुलाया और काग सम्मेलन किया. बता दें कि कलाकार दुलाल 173 जानवरों और चिड़ियों की आवाजें निकाल सकते हैं. दुलाल काग त्यौहार की परंपरा को बचाने की सकारात्मक सोच के साथ हर साल काग सम्मेलन का आयोजन करते हैं. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बसनेत ने कहा कि वीर अस्पताल को नमूना अस्पताल बनाने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा. आज वीर अस्पताल में साफ सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री बसनेत ने कहा कि अस्पताल के अंदर के ही बिचौलिए अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी कर्मचारी और बिचौलिए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कर्मचारियों को भड़काने में लगे हुए हैं, इसलिए कर्मचारियों को इस ओर सजग होने की जरूरत है. मुस्तांग की लोघेकर दामोदर कुंड गांव पालिका वार्ड नंबर 2 ढाकमर में 4 हिम तेंदुओं ने 82 हिमालयी बकरों को मार दिया. ये जानकारी वार्ड सदस्य मुआंग 76 गुरुंग ने दी. उन्होंने बताया कि बीती रात मिंगमार गुरुंग के घर पर पाली गई 82 हिमालयी बकरों को हिम तेंदुओं ने मार दिया, जबकि 8 बकरों को बुरी तरह घायल कर दिया. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. उत्तरी गजा में इसराइली सैनिकों और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अस्पतालों में मौजूद हजारों लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है. हवाई हमलों के साथ अब जमीनी कार्रवाई भी कर रही इसराइली सेना गजा के प्रमुख अस्पतालों अल शिफा, अल कुर्द्स, अल रेनतिसी और इंडोनेशियाई अस्पताल के करीब पहुंच गई है. इन अस्पतालों में घायलों, मरीजों और मेडिकल स्टाफ के अलावा ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए यहां शरण ली है. प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बीबीसी ने बताया कि शुक्रवार को दिनभर अस्पतालों के पास से गोलीबारी और धमाकों की आवाजें आती रहीं. हमास पर इसराइल अलशिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों से गतिविधियां चलाने का आरोप लगाता रहा है. वहीं हमास इन आरोपों को गलत बताता है. रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने चेताया है कि उत्तरी गजा के अस्पताल उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां से वे कभी पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे और इस वजह से हजारों लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है. इसराइली टैंक अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर दूर हैं. अस्पताल के निदेशक का कहना है कि अस्पताल के अंदर 15,000 लोग हैं. इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पास ही के एक शरणार्थी शिविर से भागकर यहां पहुंचे हैं. इस कैंप को इसराइली टैंकों ने घेर लिया था. कनाडा के एडमोंटन में गुरुवार को दिन दहाड़े सिख बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ये लक्ष्य बनाकर की गई हत्या थी. शॉपिंग प्लाजा के पास स्थित गैस स्टेशन पर 41 वर्षीय हरप्रीत सिंह उप्पल और उसके बेटे को गोली मारी गई. एडमोंटन पुलिस का कहना है कि दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई. कार में मौजूद हरप्रीत सिंह के बेटे का दोस्त भी मौजूद था, वो सही सलामत बच गया. पुलिस का कहना है कि हरप्रीत सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है. वो ब्रदर्स कीपर्स गैंग से जुड़ा था और ये हत्या उसके प्रतिद्वंदी यूएन गैंग की ओर से की गई है. इससे पहले भी उसकी हत्या का प्रयास साल 2021 में किया गया था जब वो एक पिज्जा की दुकान में अपने परिवार के साथ गया था. पुलिस का कहना है कि हत्यारों ने हरप्रीत सिंह के कार का पीछा कर उसे मारने के लिए ही पीछा किया था. हालांकि कार में उसका बेटा भी मौजूद है, इसकी जानकारी उन्हें होगी ऐसा नहीं लगता. जब उन्हें पता चला होगा कि उसका बेटा भी मौजूद है तो उसे भी मार दिया गया. अब मौसम. अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के लिए मार्गशीर्ष मासांतक अस्थायी आवास निर्माण संपन्न करने का प्रधानमंत्री प्रचंड को नेपाली कांग्रेस ने दिया सुझाव। संघीयता और गणतंत्र जैसी उपलब्धियों की रक्षा के लिए नया अभियान शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का कथन। नेपालियों का महान पर्व तिहार आज से हुआ शुरू, आज पहले दिन मनाया गया काग तिहार। और उत्तरी गजा में इसराइली सैनिकों और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच अस्पतालों में मौजूद हजारों लोगों के लिए पैदा हो गया है खतरा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।